ओम शांति। सूफियों में एक कहानी है, मौजूद नाम का एक व्यक्ति होता है जिसको सूफियों में बहुत बड़ा संत माना जाता है। उसके जीवन की कहानी है कि वो जब जवान होता है और क्लर्क होता है कोई एक ऑफिस में काम करते हुए, अचानक एक दिन सूफियों के जो संत है एक खिर्द हरे कपड़ों में उसके सामने प्रकट होता है। वो खिर्द को बहुत बड़ा माना जाता है और कुछ कुछ भक्तों के सपनों में वो खिर्द हमेशा आते रहता है। तो वो खिर्द एक बार इस मौजूद के स्वप्न में आता है और उससे कहता है कि तू यहां क्या कर रहा है, ये सब जगह छोड़ और जा उस नदी तट पर मुझे मिल। तो वो मौजूद उसकी बात को मानता है उस गुरु के और छोड़ देता है, रिजाइन कर देता है। सब लोग समझाते तुम क्या पागल हो गए हो, क्यों छोड़ रहे हो ये। वो कहता है मुझे ऊपर से आदेश आया है, और वो छोड़ देता है, नदी किनारे जाता है। नदी किनारे वो खिर्द फिर से प्रकट होता है और कहता है ये सब अपने वस्त्र निकाल और कूद जा इस नदी में। तो वो वस्त्र निकालता है और कूद जाता है, क्योंकि उसको तैरना आता है, बड़ी मुश्किल से बच जाता है। एक मछुआरा होता है वो उसको बचा लेता है और उसको पूछता है क्या तुम पागल हो गए, इतनी ऊंचाई से कूद गए इस नदी में, मरना था क्या। वो कुछ नहीं बोलता है और फिर उस मछुआरे को पता चलता है ये तो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति है और मछुआ अनपढ़ होता है, तो ये उसको थोड़ी भाषा सिखाता है। तो मछुआरा कहता है अब मैं तुम्हें अपने धंधे में शामिल कर लेता हूं, और वो उसको मछली पकड़ना सिखाता है और वो वहीं रह जाता है। एक साल तक वहीं रहता है, फिर से वो खिर्द प्रकट होता है सूफियों का गुरु हरे कपड़ों में और उसको कहता है तू यहां क्या कर रहा है, निकल यहां से, छोड़ दे इसको, वो चल दूसरे देश में चल। तो वो कहता है चलो। वो निकल जाता है आधी रात को और वहां गधे पर सवार एक व्यक्ति जाते रहता है और उसको कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे, मेरा धंधे में मदद करो। वो कहता है ठीक है, और वो उसके साथ एक साल रहता है और उसके साथ में काम करता है। फिर से वो एक दिन खिर्द प्रकट होता है और वो कहता है तुम यहां क्या कर रहे हो, उधर चलो समरखंड, वहां पर एक जगह है, वहां पर तुम दूसरा जॉब करो। तो वो वहां जाता है, वहां पे वो मर्चेंट एक व्यापारी बनता है, दो साल काम करता है। फिर से वो खिर्द प्रकट होता है, कहता है तू यहां क्या कर रहा है, यहां से निकल कहीं और चल। वो वहां जाता है तो उसको जैसे जैसे वो प्रकट होते जाते हैं और जैसे जैसे उसकी बातें मानते जाता है, कभी पूछता नहीं क्या करूं, क्यों तुम मुझे ये कहते हो और तुम हो कौन, कुछ नहीं। वो मानते जाता है और फिर धीरे धीरे अंत में वो एक ग्रोसरर, उसको क्या कहते हैं, किराना वाला, पंसारी, वो बन जाता है। और उसके पास जो भी ग्राहक, ये जो आते हैं ग्राहक, वो साथ साथ उनको ठीक करने लगता है, उसमें कुछ हीलिंग एनर्जी आ जाती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज, दैवी शक्तियां प्रकट होने लगती है उसमें, और धीरे धीरे वो संत जैसा बन जाता है। लोग पूछते हैं अरे तुमने साधना कौन सी की, कौन सी तपस्या की जो तुम में ऐसी शक्तियां प्रकट हुई, क्या किया। तो वो कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं। लोग आते हैं उसके पास कि तुमने कुछ तो जरूर किया होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी आता है ठीक होता है, तुम्हारे पास जो भी आता है कुछ ना कुछ उसको दैवी शक्तियां प्राप्त हो जाती है, तुम जरूर कुछ साधना करते हो, अपनी जीवन कहानी बताओ। तो वो अपनी जीवन कहानी सुनाता है, मैं किसी ऑफिस में काम करता था, फिर नदी में कूदा तो मछुआरा बना, फिर वहां से निकला तो एक वो गधे के पास उसके साथ में काम किया, फिर वहां से निकला तो एक व्यापारी बना, वहां से निकला पंसारी बना, और अब मैं यहां हूं। यही मेरी कहानी है, बस यही मैंने किया, इसके अतिरिक्त तो मैंने कुछ किया ही नहीं, इसी के कारण मुझे दैवी शक्तियां प्राप्त हो गई। ये कहानी बताते हैं कि उसे जो कुछ कहा गया वो करता गया और धीरे धीरे उसमें अनंत शक्तियां प्रकट होती गई। कल की जो व्यक्त संडे की जो व्यक्तवाणी थी, टीचर से मुलाकात, सात बातें थी उसमें, जो लास्ट पैराग्राफ था उसकी चर्चा आज करेंगे। तीसरा भाग, दूसरा भाग कल ज्ञान सरोवर में चर्चा हो गई तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो तीसरी जो टीचर्स से मुलाकात की बाबा ने, टीचर्स के जीवन की तीन महत्वपूर्ण धारणाओं की चर्चा है यहां पर लास्ट पैराग्राफ में, और वो सभी टीचर्स को बहुत बहुत काम की चीज है। जो भी सेंटर पर रहने वाली टीचर्स बहने हैं उनके लिए खास बातें हैं। सबसे पहली बात तो सभी जानते हैं, संतुष्टता। मतलब संतुष्टता के विषय में सभी जानते हैं कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। जो स्वयं संतुष्ट नहीं हो दूसरों को नहीं कर सकते, ये फर्स्ट पॉइंट है। इसकी ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, पर जो दूसरी वाली और तीसरी पॉइंट है यहां पर, दूसरी बात है सेवा केंद्र पर आने वाले विघ्न, उसका क्या किया जाए। और तीसरी बात है सीनियर्स के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस, उसका क्या किया जाए। तो एक हो गया स्टूडेंट्स के द्वारा विघ्न, टीचर यहां पर है बीच में, ब्रह्मा कुमारी। तो एक जो विघ्न है वो ऊपर से है और दूसरा जो विघ्न है वो नीचे से है। एक इधर स्टूडेंट्स और एक इधर सीनियर्स। तो अभी इनकी चर्चा हमको करनी है आज। तो सबसे पहले नीचे बाबा ने कहा है कि यदि कोई विघ्न आ जाता है तो अचल अडोल रहते हो। और एक उदाहरण दिया उसमें, कौन सा उदाहरण था वो? स्टूडेंट्स के द्वारा आने वाला विघ्न। कोई अनन्य बच्चा, अभी तक अनन्य था, सेंटर पर आता था और अचानक एक दिन अगेंस्ट हो गया, विरोधी हो गया, असहयोग आंदोलन चालू कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर एंटी हो गया। तो अब क्या करें, क्या करें, क्या किया जाए? अब तक रोज आता था, आराम से बैठता था और बहनों को कहता था आप तो देविया हो, और बहनों को कहता था आप तो वही हो जो मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है, आप तो वही हो जिन्होंने मेरे जीवन में काया पलट कर दिया। और आज एकदम ही पलट गया पूरा एंटी हो गया, पूरा विरोधी हो गया, पलटूराम तो अब क्या किया जाए? ये एक सबसे पहली बात बताई बाबा ने यहां पे। एक तो बात अच्छी है कि उसके प्रति तरस की भावना है, रहम की भावना है, पर ये काफी नहीं है, तीन चीजें और चाहिए। हाँ, वो भी थोड़ी ऊंची स्थिति हो तो तरस आएगा, नहीं तो उसने ये किया तो हम ये करेंगे, फिर सब भूल जाते हैं ज्ञान बिन। उसने हमारे साथ ऐसा किया, हमारा अपमान, वो भी सब स्टूडेंट्स के सामने। कौन सी तीन बातें करनी है इसमें? सबसे पहला तो हलचल में नहीं आना, दूसरा, पहला हलचल में नहीं आना, दूसरा अलबेले में नहीं बनना, और तीसरा फीलिंग में नहीं आना। ये तीन चीजें करनी है जब जब। अब ये बात केवल टीचर्स की नहीं रही कि उनके सेंटर पे आने वाला कोई कुमार, कोई कुमारी, कोई माता, जिस माता को इतनी पालना दी, जिस माता को किचन में एंट्री दी, जिस माता को हमने कोर्स कराया, और जिस माता को मधुबन में बाबा से घुमाने, बाबा से मिलाने लेके आए, जिस कुमारों की इतनी पालना की, वो आज कौन बन गए? आस्तीन के सांप। हमारी कंप्लेंट हमारे ही सीनियर को जाकर सुना रहे, हमारी ही कंप्लेंट। जिनकी इतनी पालना की, जिनको इतना सब कुछ किया, मां बनकर जिनकी पालना की, वो आज ऊपर जाकर हमारे विरुद्ध लेटर लिख रहे हैं, हमारे ही चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, हमारे ही विषय में कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे ही विषय में दूसरों को भड़का रहे हैं। ये कितना बड़ा विघ्न है। और ब्रह्मा कुमारी जीवन अग्नि परीक्षा है, अग्निपथ है, अग्नि शिखा जीवन है, लिटमस टेस्ट। इसमें ये सब होगा, जो अनन्य थे वो अन्य हो जाएंगे, पराये हो जाएंगे, विरोधी हो सकते हैं। इसकी भी तैयारी चाहिए। इसके लिए बाबा ने तीन बातें कही, एक तो हलचल में नहीं आना, ये भी ड्रामा है, ये भी उसका पार्ट है। जरूर उसकी बुद्धि को किसी ने विषाक्त कर दिया, पॉइजन्ड, जरूर वो व्यर्थ के संग में गया होगा, जरूर ज्ञान योग की धारणा कम हो गई होगी, जरूर कुछ ना कुछ तो कर रहा है, किसी ना किसी कुसंग में है। वो कुसंग इंटरनेट का हो सकता है, जिसके वजह से उसकी धारणा है ज्ञान योग से जो रिक्त हो गया, वो क्या करेगी आत्मा, कहां बुद्धि जाएगी, जिसमें ज्ञान योग ही नहीं है। अमृत वेला लास्ट कब किया था उसकी स्मृति भी नहीं है, कब लास्ट अमृत वेला किया था और कब लास्ट बार मुरली पड़ी थी अगर कोई पूछे तो याद ही नहीं, जैसे भूली बिसरी यादें है वो, मुरली अमृत वेला। एक बहन ने यह अनुभव सुनाया था ना, जब हम ज्ञान में आए तो बहुत मुरली सुना करते थे, अभी तो हम सीनियर हो गए मतलब शुरुआत के दिनों में हम जाते थे सेंटरों में और मुरली सुनते थे, अभी तो ऐसे अनुभव सुनाया था इधर ही बैठ के, अभी हो गए पूर्ण अवस्था में को प्राप्त हो गए। तो ऐसे विघ्न आएंगे तो तीन चीजें यहां होनी चाहिए। पहला, हलचल में नहीं आना है। कैसे नहीं आएंगे, तो ड्रामा की पॉइंट्स यहां याद चाहिए कि हर एक आत्मा का पार्ट है। एक तो केवल पार्ट नहीं, हर एक आत्मा का अपना अपना भाग्य है और हर आत्मा उतना ही ज्ञान लेगी जितना उसके भाग्य में है। एक पॉइंट है बस, उसका भाग्य पूरा हो रहा है उसको जाना ही है, उतना लेके वो चली जाएगी। मधुवन में इतना समय रहेगी, काम उसका पार्ट पूरा हो गया, यहां से अपने आप कोई ना कोई कारण बनेगा और निकल जाएगी, वो सब कुछ करके जाएगी, ऐसे आसानी से थोड़ी जाएगी। सेंटर में आना, सेंटर में रहना, इसकी भी यात्रा है। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक उसका पार्ट है, किसी का लंबा है, किसी का कम है, किसी का हमेशा का है, किसी का अल्पकाल का है। अल्पकाल आना, बहुत सेवाएं करना और सबको धक्का देके निकल जाना, सब कुछ उजाड़ कर, ऐसी डिससर्विस करके जाना कि फिर सदियों तक वहां कोई सर्विस ना हो। जगदीश भाई ने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई है। एक प्रिंटिंग प्रेस होती है, प्रिंटिंग प्रेस, तो जो एक एम्प्लॉय होता है, काम करने वाला व्यक्ति, उससे एक बार गलती हो जाती है, तो वो मालिक उसको बुलाता है, कहता है तुमसे ये गलती कैसे हो गई, और बहुत डांटता है उसको, बहुत डांटता है, इतना डांटता है कि काम से निकाल देता है। तो ये जो प्रिंट, वो जो व्यक्ति होता है बड़ा एक्सपर्ट होता है और प्रिंटिंग मशीन बहुत बड़ी होती है, तो वो जाते जाते खुराफात करके जाता है, एक छोटा सा सिक्का लेता है और मशीन के ऐसे हिस्से में अंदर डाल के रखता है कि मशीन ही बंद हो जाती है और वो चला जाता है। तो उसके बाद में मशीन चालू करते तो मशीन ही चालू नहीं हो रही है, ये सत्य घटना है। वो बहुत कोशिश की मशीन को चालू, बहुत सारे मैकेनिक्स को बुलाया पर किसी को कोई फॉल्ट ही पता नहीं चला, और ये जो कारीगर था सबसे एक्सपर्ट, और उसको एकदम ऐसे पार्ट में छोटा सा सिक्का उसने घुसा के रखा कि जब तक वो है तब तक मशीन चालू नहीं होगी। तो पूरी कोशिश की महीने भर, पर कितने 5 लोग आए अलग अलग मैकेनिक्स मशीन को ठीक करने, पर मशीन ठीक नहीं हुई। फिर आखिरी में किसी ने कहा कि वो जो आपने जिसको निकाल दिया ना उसको बुलाओ वही ठीक कर सकता है। तो मालिक ने कहा अरे बाप रे, उसको तो इतना डांटा था मैंने, तो फिर भी अब कोई मरता क्या ना करता, गया तो और उसको अनुनय विनय माफ कर दो चलो एक बार। तो वो आता है और फिर चुपचाप वो सिक्का निकालता है वहां से और मशीन चालू। तो जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते, सारा बिगाड़ के जाना, अब हम नहीं रहेंगे तो सब बिगड़ेगा, अब देखते हैं कैसे करते हो तुम, तुम्हारी मशीन कैसी चलती है। तो जाएंगे तो सब कुछ उजाड़ कर, पूरी फुल डिस्टर्बेंस, ताकि कोई हम नहीं तो कोई भी नहीं, हम नहीं तो कोई भी नहीं। तो ऐसे तो हलचल में नहीं आना है, ये सब देखकर, ये सब होगा। ड्रामा में आत्माओं के वैरायटी पार्ट है, जिन आत्माओं ने इधर ओम शांति भवन में प्रोग्राम किए, डांस किया, कल्चरल प्रोग्राम किए दादियों के सामने, आज वो कहीं और पार्टियों में चले गए। जो छोटे छोटे बच्चे दादियों की जिन्होंने पालना ली ओम शांति भवन में, यहां पर डांस विंस किया कल्चरल प्रोग्राम में, आज वो है ही नहीं। फर्स्ट इनाम लिया, दादियों ने कितना प्यार दिया, दादियों की गोद में जिनका बचपन गुजरा, ऐसे कितने बच्चे हैं, वो आज है ही नहीं, माया की गोद में चले गए। देखो दूर वाले सोचते हम मधुबन में क्यों लेट आए, मधुबन में हम क्यों लेट आए, हम क्यों ऐसा, अच्छा हुआ लेट आए, पहले आते तो चले जाते थे इनके जैसे, ये ठीक है जो आए वही ठीक है, नहीं तो जैसे ये चले गए तुम भी यहां से रफू चक्कर। तो सबसे पहला हलचल में नहीं आना, ये सब देखिए, ये सारी हलचल होगी, पहले ही बता के रखा है ड्रामा है, इसमें सब होगा, जो सोचा नहीं था कभी वो भी होगा। राजू भाई जी ने एक बार एक क्लास में बात बताई थी, उन्होंने कहा था मैंने ऐसे ऐसे कुछ ब्राह्मण आत्माओं को देखा है कि पिछले 20-30 साल से आज तक कभी अमृत वेला दिखे ही नहीं, 18 जनवरी के दिन भी नहीं दिखे, अपनी गुफा में तपस्या रत। यहां सब है, इधर भी है उधर भी है उधर भी है, सब जगह सब है। तो इस सब देख के हलचल में नहीं आना है, नथिंग न्यू, तो सबसे पहले हलचल में नहीं आना है। दूसरा अलबेले भी नहीं हो जाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसा हुआ तो, क्योंकि एक हुआ तो दूसरे भी होंगे, दूसरा भी तैयार हो जाएंगे, तो अलर्ट खुद हो जाना है, वहां पर अलर्ट सिचुएशन में रहना है। अगर कोई ऐसा एंटी होता है तो हमारे पास भी कुछ अस्त्र शस्त्र हथियार हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे किसी सेंटर की एक बहन ने जमीन ली, एक भाई जो अनन्य था उसने थोड़ी कम भाव में जमीन दी और बाद में पता चला वो जमीन उसकी थी नहीं। और अभी कोर्ट केस चालू है और वो कहां चला गया पता ही नहीं, वो जमीन तो किसी और की थी। तो जबरदस्त फंस गए। वो सब बन गया पर कोर्ट केस चालू है, चक्कर लगाना चालू है अभी भी। तो अलर्ट भी रहना, ऐसे बुद्धुओं की नहीं बैठना है यहां, अलर्ट। तीसरा अलबेले नहीं, तीसरा फीलिंग नहीं, मेरा इतना अच्छा अनन्य, रोना धोना ये सब नहीं चलेगा इधर, रोना रोने का बिजनेस, क्राइंग बिजनेस बंद करना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी जीवन में क्राइंग बिजनेस नहीं चलता है, छोटी छोटी बातों में उफ आउच, उल्टा घड़ा भव। कौन सा घड़ा भव? उल्टा एंड चिकना घड़ा भव, जिसमें कुछ फर्क नहीं पड़े, इतनी अचल अडोल स्थिति हो, कोई कुछ कहे कोई कुछ करे कोई कुछ करे कोई कुछ करे, कुछ ना कुछ तो करेगा, कांटे का जंगल है, काटोगा, कांटे लेकर ही खड़े हैं, मुरली क्लास पूरी हुई और कांटे लेकर बाहर छुपाने के लिए। अज्ञानियों के कांटे तो फिर भी सहन कर लोगे, पर कांटे ब्राह्मणों के हाथ में है, कांटे किसके हाथ में है? अपनों के हाथ में है, अपनों के दिए हुए दर्द ज्यादा अंदर, अपने के घाव भरते नहीं जल्दी, छुपते बहुत ज्यादा है। बाहर वाले तो कितना भी घाव दे दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपनों के घाव। तो ये तीन चीजें, यदि स्टूडेंट्स के द्वारा कोई माया आ जाए, और स्टूडेंट्स के द्वारा क्या माया आ सकती है? एक तो ये बताया कि वेंटी हो गया, और स्टूडेंट्स के द्वारा माया क्या आ सकती है? स्टूडेंट्स में मोह हो जाए, स्टूडेंट से ही प्यार हो जाए, वही स्टूडेंट अच्छा लगने लगे, और भेदभाव, और स्टूडेंट्स माया, स्टूडेंट्स आते हैं टीचर है, बिजनेस चालू कर देना स्टूडेंट्स के साथ, लेन देन पैसों की चालू कर देना, ये जो बिजनेस सिस्टम है चालू कर देना, ये एक जबरदस्त माया है। और पर्सनल रिलेशनशिप्स बना देना, फैमिलियरिटी बढ़ा देना, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पर या मैसेजेस के द्वारा या कॉल के द्वारा किसी भी तरह का, ये सब कर देना, ये सब स्टूडेंट्स के द्वारा माया। भोजन क्या? भोजन का बार बार निमंत्रण देना, निमंत्रण, स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल टोली, स्पेशल राखी, ये सारी चीजें, और उनके घर जाना बार बार, उनके साथ घूमने जाना, और अच्छा और क्योंकि उनके पास कार है, शॉपिंग करने जाना स्टूडेंट के साथ, तो पैसों की लेन देन, घूमना, ये सब माया बन जाती है एक दिन। खाना पीना साथ में, और वो लौकिक चर्चाएं करना, तो ये सब फैमिलियरिटी है। स्टूडेंट और टीचर, ये एक बहुत बड़ी डिटैचमेंट चाहिए, नहीं तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप रोमांटिक रिलेशनशिप बन जाता है। फिर प्यार रंग को नहीं देखता, चमड़ी के प्यार उम्र को नहीं देखता, उसे ये सब कुछ पता नहीं है। और फिर बहुत ज्यादा शेयर करना इंटरनल बातें, इधर की उधर, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स के द्वारा माया बन सकती है। डिटैचमेंट, वो भी डिटैच रहे इनकी सेफ्टी के लिए, और ये भी डिटैच रहे उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि उस सेंटर का वायुमंडल पावरफुल हो, नहीं तो सेंटर में व्यर्थ चलेगा। और परचिंतन, और एक दूसरी चीज है, व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, झरमुई झगमुई, गॉसिप्स करना बैठ के, इधर उधर की चर्चा, पॉलिटिक्स, फिल्म, शॉपिंग की चर्चा, क्या खरीदना है, ये सारी चीजें माया बन जाती है। जो वार्तालाप हो वो डिवाइन वार्तालाप हो, जो वार्तालाप हो ज्ञान युक्त वार्तालाप हो, तपस्या युक्त वार्तालाप हो, नहीं तो ये माया बन जाती है। तो दूसरी धारणा जो टीचर के लिए बाबा ने कही, वो अचल रहना, अचल अड़ोल स्थिति, हलचल में नहीं आना, दूसरा फीलिंग में नहीं आना, और अलबेला भी नहीं बन जाना, अलर्ट रहना। इसलिए जो यज्ञ की नियमावली है, नियमावली एक बार मंजू बहन ने पढ़ी थी यहां पर, वो महीने में एक बार तो भी सभी स्टूडेंट्स को टीचर सुनाए। कुमारों के लिए क्या नियम है, कुमारियों के लिए क्या नियम है, टीचर्स के लिए क्या नियम है, स्टूडेंट्स के लिए क्या नियम है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं क्योंकि रोज की मुरली सुनते सुनते मेन नियम क्या क्या है वो भूल जाते हैं, तो उसका थोड़ा रिविजन होना चाहिए, ताकि टीचर खुद भी अलर्ट रहे उन नियमों के विषय में। और सेंटर का वायुमंडल पावरफुल हो, आश्रम हो, वो बिजनेस हब नहीं, ये खरीदना है वो खरीदना है, ये चीज जापान से लाई, वो चीज वहां से लाई, और सेंटर कोई वो ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको, शो केस, वो मॉल नहीं है, वो आश्रम है, होटल नहीं है कि इतना डेकोरेट करके रखा है। अरे रे रे रे। ऐसा लगता ही नहीं कि ये हम किसी आश्रम में प्रवेश कर रहे, क्योंकि जो आते हैं उनका ध्यान ये पर्दे कहां से लाए उस पे जाता है, ये भोग के ऊपर का कपड़ा कहां से लाया, भोग हो रहा है वो छोड़ दिया, भोग के ऊपर का जो कपड़ा और उसकी जो डिजाइन है वो कौन से दुकान से लाई, इसके ऊपर ध्यान चला जाता है, ये फ्लावर पॉट, ये शैंडिलियर, ये कहां से लाया, वो कहां से लाया, सारा ध्यान उस पर, वातावरण, ये सब चीज से होटल बनता है, आश्रम नहीं, सेंटर अर्थात आश्रम, उस पे जाते ही प्यूरिटी के वाइब्रेशंस आने लगे। और एक दूसरी चीज, ये तो पॉजिटिव वाली चीज थी, नेगेटिव वाली है, झगड़े ना हो स्टूडेंट के साथ नहीं तो टीचर और स्टूडेंट के झगड़े, और नहीं तो टीचर और स्टूडेंट्स, टीचर बैठ के वहां पे बैठ के टॉन्ट करे स्टूडेंट्स पर कि कौन कौन, कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, जबकि पता है वो सामने बैठा है जो करता है, उसी के ऊपर टॉन्ट कसा जा रहा है, और उसको भी पता है मेरे ऊपर कर रहे हैं, वो आना ही बंद कर देता है। हाँ। मुरली के अंदर मुरला उदाहरण सहित, ये सब ऐसी ऐसी बातें हैं कि बहुत खतरनाक चीजें है, ये बहुत जबरदस्त डिससर्विस करती है। हमने एक जगह बहुत खराब बातें पर बता रहे हैं एक सेंटर पर थे, तो वहां पर बड़ी बहन जी थी, उसके पास तीन बिल्लियां थी, बिल्लियां प्यार सेवाधारी तो उनको दूध वगैरह पिलाती थी सेंटर पे। तो बड़ी बहन जी एक बार चली गई, तो छोटी बहन मुरली सुना रही थी, और मुरली में पॉइंट आया लगाव मोह के बारे में, तो छोटी बहन ने सुनाया सारे स्टूडेंट्स को लगाव मोह, जैसे हमारी बड़ी बहन जी, देखो कैसा मोह है, बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा। तो ये सेवा हुई या डिससर्विस हुई उनके प्रति स्टूडेंट्स का क्या भाव, सारी निगेटिविटी आ गई ना नहीं पर डिससर्विस कर दी, तो बहुत बहुत बड़ा पोस्ट है ब्रह्मा कुमारी, और वो भी सेंटर पर, सेंटर तो पब्लिक सेक्टर है, सेंटर स्टेज है विश्व का, वहां कोई अपना लौकिक घर नहीं है, वो अलौकिक स्थान है, होली स्थल है, वो मधुबन है, मिनी मधुबन है, यज्ञ कुंड है, तीर्थ स्थान है वो। तो वो स्थान पे रहना मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे लौकिक जैसे संबंध बना के नहीं रख देना है, भाई बहन और ये वो, अलौकिकता हो उसमें, सारे रिलेशंस में डिटैचमेंट हो, लव हो, रिस्पेक्ट हो, झगड़े ना हो, बस लून पानी ना हो। तो ये पहली बात। अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, जब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो क्या किया जाए। जब सीनियर्स इंस्ट्रक्शन दे तो क्या करें, सात बातें करनी है। सीनियर्स फिर वो कोई भी हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट, क्योंकि ये यज्ञ ऐसा है कि हरेक के ऊपर कोई ना कोई है। स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर है, टीचर के ऊपर इंचार्ज है, उच्चार्ज के ऊपर जोनल इंचार्ज, और मधुबन, मधुबन के जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें एक ना एक इंचार्ज हमारे ऊपर है ही, हरेक के ऊपर। तो जब इंस्ट्रक्शंस दिए जाए तब क्या किया जाए, तो सात बातें हैं जो करनी है। कौन कौन सी पहले आप बताओ, फिर हम बताएंगे। नम्रता से स्वीकार करो और क्या करो, सात बातें हैं। ये जो जीवन है ब्रह्मा कुमारी और जो भी सेवा केंद्र क्या, उसमें बहुत कुछ, उसमें एक नियम है, सिक सिक झुक झुक और मरमर, ये गोल्डन नियम है, पहला और द अल्टीमेट, फर्स्ट एंड द फाइनल, जिसमें तुमको सीखते रहना है और झुक 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 चलना है, अकड़ के चले तो गए, और मरमर, ये मरना मरना नहीं है, जीना है, मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा, बहुत ही मीठा मरण है ये, वो है काशी कलवट, ये है अविनाशी कलवट, आबू कलवट, मधुबन कलवट। तो जब भी इंस्ट्रक्शंस मिले तो कुछ चीजें करनी है। सबसे पहली बात, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। जैसे बाबा ने टीचर्स की मुलाकात में पहले इसमें ही कहा कि यदि तुम्हारा स्थान बदली कर दिया जाए तो तैयार हो, ये बात के लिए। एक बार हुआ भी था ऐसा, सबको उलट पुलट कर दिया था, इधर से उधर, उधर से उधर, खुश भी हो गए थे थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, टीचर्स को चेंज कर दिया था ना दादी ने, हाँ तो '94-'95 कोई कोई खुश हो गए कि हमारे तरफ से जा रही है, और वो जहां जा रही है वो दूसरे दुखी हो गए कि हमारे तरफ आ रही है, दोनों चीजें हुई तो बैलेंस हो गया ना। चलो वो भी एक परीक्षा थी। तो सबसे पहली चीज, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन, सिखावन, शिक्षा या समझानी या कोई बात बताई जाती है कि तुम ये करो, तो सबसे पहले कंफ्यूज नहीं हो जाना है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज मून जाना, ये और हमको ये ऐसी बातें, ये क्या है, ऐसा होता है क्या, ये वाली चीज। दूसरी बात, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन मिले तो ये नहीं सोचो, क्या नहीं सोचो, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, हमको ये बात क्यों बताई गई। और इसका उत्तर बाबा ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि वो जो तुम्हारे सीनियर है, वो जो इंचार्ज बहन है और जो भाई है, डिपार्टमेंट में बॉस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रभारी, जो भी हेड है, वो जो भी कह रहा है, उसके पास तुमसे थोड़ी सी ज्यादा, तुमसे ज्यादा अनुभव है, अकल तो उसको थोड़ी ज्यादा है तुमसे, और चलो तुम नए नहीं हो, पुराने हो, फिर भी हो सकता है उसी अनुभव से वो गुजरा है, उसके पास थोड़ी तो अकल ज्यादा है तुमसे, और चलो उसके पास हो भी ना, पर ये सोचो कि बाबा उसके द्वारा बोल रहा है ये इंस्ट्रक्शंस, मेरे जीवन में जो हो रहा है वो हमको याद है। एक बार हम बहुत पहले जब इधर थे तो रोज नीचे जाया करते थे, वो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से घूमता फिरता दवाखाना, तो एक ड्राइवर आया था, वो 15 से 20 मिनट में नीचे पहुंचा देता था, ऐसा तेज तूफानी ड्राइवर था, तो उसके बाजू में बैठना मतलब बस बाबा को याद करते रहते थे हम 20 मिनट, और सोचते थे बाबा आप हमारे, ये हमारा ड्राइवर नहीं है, आप ही हो, बस अब आप ही देख लो, गए तो सीधा खाई में नीचे। और वो सुनता नहीं था बिल्कुल, किसी की भी नहीं सुनता था, वो अपनी मर्जी का मालिक था। ऐसे चला था कि 20 मिनट में ऊपर से 20 मिनट में नीचे आबू रोड, तो ऐसे भयंकर चलाता था। तो हम बिल्कुल आग बन करके योग में। तो ये जो भी इंचार्ज है, जो भी बहन है, ये हमको चलाने वाला वो है, ये खाली निमित्त है, इसके द्वारा वो आ रहा है संदेश। तो ज्यादा सोचना नहीं है। तो पहला बताया, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, मूंझ नहीं जाना है। दूसरा, ये सोचते नहीं बैठना है ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों किया, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। वो जो भी है, उनके पास उनके थोड़े बाल धूप में ज्यादा सफेद हुए हैं हमसे। तीसरा, धैर्य से समझना है उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए। यदि कोई आके कहे कि आज से तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज, एक तो रिएक्शन है क्यों झगड़ा, इससे पहले कि पूरी बात कहे झगड़ा चालू। बाबा कह रहे धैर्य से समझो, धैर्य धारण करो, तुरंत कुछ नहीं करना है, धैर्य से, पेशेंस। फिर टाइम दो। चौथा, अपने आप को टाइम दो थोड़ा सा, और या टाइम लो उनसे, वो उनको कहना मैं कल तक बताता हूं, सोच के थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, अभी तो दिमाग गर्म है, आपने जो ऐसी बात कह दी पूरा तन बदन गर्म हो गया है, कल बताता हूं आके, सोच के थोड़ा सा चिंतन विंतन करके कल शांत मन से बताऊंगा, टेरेस वेरेस पे जाके चिंतन करूंगा, नकी के 2-3 प्रदक्षिणा करके फिर बताता हूं फाइनल। उसके बाद में गंभीरता से इस बात को समझना कि इसमें कुछ ना कुछ रहस्य भरा है, गंभीरता से समझना कि इसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य है ना, ऐसे थोड़ी ना कुछ कह रहा है कोई, और मेरा शायद कहीं और हिसाब किताब है किसी नए स्थान पर, इसलिए मुझे वहां भेजा जा रहा है एकदम एकदम किसी जंगल में, कलराटी जमीन में, जहां कोई नहीं जाता, जहां बहुत डिसर्विस हुई है, अभी वहां भेजा जा रहा है, और मुझे ही क्यों भेजा जा रहा है। शांत, शायद तुम्हारे द्वारा ही वहां कल्याण होने वाला है, कोई आत्मा तुम्हारे लिए रुकी हुई है, आह्वान कर रही है सब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और तुम ही उसके उद्धारक है, बिना तुम्हारे उसका कल्याण ही नहीं होगा, तुम ही इष्ट देव हो। वो गणेश की पूजा कर रहा है और हम गणेश है, और हनुमान जी जाके क्या करेंगे वहां पे, हनुमान जी से कभी भी संतुष्ट नहीं होगा वो, उसे गणेश ही चाहिए, और वो गणेश मैं हूं। तो गंभीरता से क्या करना है, सोचना कि इसमें क्या रहस्य है। अगला पॉइंट है, यदि वो रहस्य समझ में नहीं आए, उसी से पूछो भाई क्या रहस्य है आप जो ये कर रहे हो, आप ही बताओ इसमें क्या राज है, क्यों मुझे भेज रहे हो, क्यों ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मेरी क्या गलती है इसमें, मेरी कुर्सी को खतरा है इसलिए तुम दूर चले जाओ, ये भी ठीक है, उसकी भी बात राइट है। जैसे एक इंटरव्यू देने के व्यक्ति पहुंचता है ऑफिस में, तो ऑफिसर पूछता है उसका इंटरव्यू, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो कहता है मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक आप जिस चेयर पे बैठे हो ना उसमें मैं अपने आप को नहीं देख लेता, जब तक आपको यहां से निकाल के मैं नहीं बैठ जाता, ये मेरा लक्ष्य है, अब बोलो क्या करना है। तो और हर एक को थोड़ा सा डर होता है, सीनियर्स को डर है अपने पद को खोने का, अपनी पोस्ट को खोने का, जूनियर्स को इच्छा है पोस्ट मिलने की कि हमें इंचार्ज बनना है, कब तक हम सेंटरों पर इसी तरह का जूनियर सिस्टर बनकर रहे, हमें भी कोई इंडिपेंडेंट सेंटर मिल जाए और हम भी इंचार्ज बन जाए, और जो इंचार्ज है उनको थोड़े दूसरे प्रकार के भय होते हैं, उसमें थोड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बाबा कह रहे हैं क्या करो, उनसे ही पूछो, आप ही बताओ इसमें रहस्य क्या है। और लास्ट पॉइंट, डायरेक्शन को रिफ्यूज नहीं करो, ना नहीं कर दो एकदम से, डू नॉट रिफ्यूज द इंस्ट्रक्शन। सो शुरुआत होती है कंफ्यूज से ना होना, और एंड होता है रिफ्यूज ना करना, उसके बीच में ये 5 चीजें हैं, उसको समझो ये क्या इंस्ट्रक्शन है, क्यों दिया गया, क्या दिया गया, धैर्यता से, शांति से, गंभीरता से विचार करना, ये सारी टीचर्स के लिए बातें हैं। तो ये तीसरी बात है, यदि इंस्ट्रक्शन को नहीं माना तो 2 चीजें हो जाएगी, कौन कौन सी हरि भाई, नहीं, मुरली में क्या बताया, जिनके तुम निमित्त बनते हो उनमें ये संस्कार भर जाएंगे, जिनके तुम निमित्त बनते हो। जैसे तुमने किया ना, फिर वो तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। तुमने उनका नहीं सुना तो वो भी तुम्हारा नहीं सुनेंगे। एक तो ये, और दूसरा सेंटर पर एक खेल होगा, कौन सा, रूसना और रूठने का। ये दो चीजें हो जाएगी अगर ये इंस्ट्रक्शन को नहीं माना तो। परंतु हाँ, एक दूसरी एक बात है, अपने अंदर की भी कुछ प्रेरणाएं होती है, इंट्यूशन, बाबा की हमको भी डायरेक्ट कुछ टचिंग होती है, और वो टचिंग्स यदि इंस्ट्रक्शन से टकरा रही है, वो कहते ये करो और हमारा मन कहता है ये एकदम स्टूपिड बकवास है। डिस्कशन किया जाए उनके साथ बैठकर, या चिंतन को बढ़ाया जाए, गंभीरता से सोचा जाए, ये सारी जो बातें कर रहे हैं, एकदम सीधा ना नहीं कर दो, बस ये कहने का भाव ये है। शायद उसमें, उस सोच में ही कुछ ना कल्याण का एक पॉइंट निकल जाएगा। तो ये सब टीचर्स के लिए, चलो ये टीचर्स की बात छोड़ दो, दूसरे जो भी गृहस्थ में रहते हैं, मधुबन में रहते हैं और कहीं पर भी रहते हैं, उनके लिए भी केवल ये श्रीमत के इंस्ट्रक्शन, सीनियर्स की भी छोड़ दो, श्रीमत ले लो सीधा। श्रीमत भी जो दी जाती है उसमें भी ये सारी चीजें करनी है, सातों चीजें। श्रीमत से कंफ्यूज नहीं हो जाओ, श्रीमत पूछो अगर समझ में नहीं आ रही है, ये बाबा ने कहा इसका क्या राज है, उनको पूछो कि जो थोड़ा आपको लगता है थोड़ा इसने ज्यादा समझा है। एक दूसरा, उसके बारे में ये नहीं सोचते बेटो बाबा ऐसा क्यों कहता है, वैसे क्यों कहता है, अभी ऐसा करेगा वैसा। तीसरा, उसको धैर्यता से सोचो, उसके बाद में नेक्स्ट, धैर्य के बाद टाइम दो, टाइम देना। हर चीज को समझने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। आज भी कहा ना मुरली में, धारणा के लिए मुख्य सार मंजूबेन, सेकंड लाइन लास्ट पॉइंट, विचार सागर मंथन करो, जो भी सुनते हो उसके ऊपर क्या करो, विचार सागर मंथन करो, तो वह समझ में आएगा। तो टाइम दो अपने आप को, ऐसे ही है ना, श्रृंगार करो, अलंकार दिव्य गुणों के। फिर उसके बाद में धैर्यता, धैर्यता हो गया, उसके बाद में समझना हो गया, उसके बाद में टाइम देना हो गया, फिर एक गंभीरता। गंभीरता से क्या सोचो, इसमें कौन सा रहस्य है, कौन सा राज है, जैसा वो मौजूद, जो जो उसको कहा गया करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, और दैवी शक्तियां उसमें आने गई, ओबीडियंस से केवल किया, दूसरा कुछ भी नहीं उसने, कोई साधना नहीं की, केवल मानता गया, मानता गया, मानता गया, मानता गया, मानता गया। ये नहीं सोचा मुझे ही क्यों कहा जाता है, ये दूसरी बहन भी तो है, मुझे क्यों कहते हैं, अरे तुमको कहा जा रहा है तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए। फिर अगली पॉइंट, गंभीरता, अगर नहीं समझ में आए तो उनसे ही पूछो, और लास्ट पॉइंट, रिफ्यूज नहीं करो। तो ये सात चीजें हैं जब करना है। तो तीन बातें हमने देखी, सबसे पहला संतुष्टता, जो स्वयं संतुष्ट नहीं हो दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात हमने देखी कौन सी, अगर कोई विघ्न आ जाता है तो क्या करना है, तीन चीजें, हलचल में नहीं आना, अलबेले नहीं बनना, और तीसरा फीलिंग देवी नहीं बन जाना, छुईमुई नहीं बन जाना, रोते नहीं बैठना, रोना, रूठना, रूसना, ये सब चीजें नहीं करना है। आंसुओं को क्या कर दो, बस सुखा दो। योग की धूप थोड़ी पावरफुल करनी पड़ेगी, सोलर लगाओ अगर धूप नहीं आ रही है ज्यादा तो, पर आंसुओं की टंकी को तो सुखाना जरूरी है, नहीं तो आंसू बहते रहेंगे। तो ये तीन बातें वहां पर, और फिर लास्ट में ये सारी बातें। तो ये थी कल की जो संडे की जो अव्यक्तवाणी थी उसके विषय में। ओम शांति।